महेश जी ने अपने कुछ जानकारों को त्रिशा के पीछे लगा रखा था, पर त्रिशा का उन्हें कोई पता नहीं चल रहा था। मीनाक्षी जी ने चिंता जताते हुए कहा, अगर हमसे पहले त्रिशा रावत खानदान को मिल गई तो क्या होगा उसके साथ? महेश जी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, वो उसके साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे, बस हमें अपनी खैर मनानी चाहिए, क्योंकि अगर त्रिशा ने सच बोला तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। शाम का वक्त था। अमर सुबह नाश्ते के बाद ऑफिस आ चुका था, लेकिन फिलहाल उसका केबिन एक सीईओ के केबिन की बजाय एक सीक्रेट माफिया के केबिन जैसा लग रहा था, क्योंकि उसके सामने एक आदमी घुटनों के बल बैठा था। उसके मुंह से खून निकल रहा था, सर पर भी गहरी चोटों के निशान नजर आ रहे थे। अमर ने अपनी चेयर पर झुकते हुए कहा, तो वो लिफाफा तुम रिसेप्शनिस्ट को देकर गए थे? उस आदमी ने डरते हुए धीरे से हाँ में सर हिलाया और फिर अगले ही पल अपनी कांपती डरी हुई आवाज में बोला, पर मुझे नहीं पता था सर उसके अंदर क्या है, मुझे बस ये कहा गया था कि ये लिफाफा आप तक कैसे भी पहुंचा दिया जाए। दीक्षांत भी पास ही चेयर पर एक पांव पर दूसरा पांव रखे स्टाइल से बैठा था। उसने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ पूछा, और कौन से बाबा जी ने दिया था ये पर्चा जिसमें अमर की शादी की भविष्यवाणी की गई है और सच भी हो गई? मतलब कमाल, हमें दर्शन करने चाहिए ऐसे बाबा जी के, कहाँ मिलेंगे ये धन्य महाराज हमें। दीक्षांत जरूर ये सब हंसते हुए बोल रहा था, पर सामने बैठे इंसान को पता था कि दीक्षांत कितना सनकी इंसान है, उसकी जान लेने में उसे एक पल नहीं लगेगा। उस आदमी ने डर के मारे अपना लार गटकते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये कौन है। दीक्षांत ने गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा, तो क्या कबूतर ले चिट्ठी तुझे देके गया था, वो भी इस मॉडर्न जमाने में? उस आदमी की अब डर से हालत खराब हो रही थी। अब तक वो पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो चुका था। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, उसने मुझे मेरे बच्चे को मारने की धमकी दी थी, और जो आदमी ये लिफाफा देके गया था उसने मास्क पहन रखा था, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया साहब, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अमर ने गुस्से से अपनी गर्दन रगड़ते हुए अपनी क्रिस्टल ब्राउन आंखों से उस आदमी को घूर कर देखा और अगले ही पल एक खंजर अपनी जेब से निकालते हुए उसकी जांग में धंसा दिया। इसी के साथ उसकी एक दर्दनाक चीख पूरे केबिन में गूंज गई। आसपास खड़े अमर के बॉडीगार्ड्स भी एकदम से कांप उठे थे, उसकी चीख बिल्कुल दिल दहला देने वाली थी। अमर ने दांत पीसते हुए कहा, बिना बीवी तेरा बच्चा कहाँ से आया बे? उस आदमी की डर के मारे आंखें फैल गईं, क्योंकि उसका झूठ पकड़ा गया था। दीक्षांत ने हंसते हुए कहा, तेरे सामने जो बैठा है उसके पास तेरी जन्म कुंडली से लेकर मरण कुंडली तक है, तो ज्यादा होशियारी नहीं दिखा। अमर ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, ये मुझे भी पता है, तू अपने मालिक को नहीं जानता, पर बड़ा वफादार कुत्ता है, उसके पीछे से उसकी बुराई तो नहीं करता, ना तो उसका नाम लेगा, क्योंकि नाम तो तुझे खुद नहीं पता, क्योंकि तेरे मालिक जितना बेईमान इंसान तो इस पूरी दुनिया में नहीं है, छोड़कर मुझे तो मेरे सामने होशियारी नहीं चलने वाली है। ये सब अमर बहुत खतरनाक लहजे में बोल रहा था और बोलते हुए उस खंजर को उस आदमी की जांघ पर अंदर की तरफ घुमा रहा था, जिससे उस इंसान की चीखें लगातार तेजी से निकल रही थीं और अमर का खौफ बढ़ते पल के साथ लगातार बढ़ रहा था। कुछ ही देर में उसकी काफी ज्यादा स्किन उसकी जीन से बाहर दिखने लगी और उसने रोते हुए कहा, बताता हूं मुझे किसने कहा, प्लीज अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर अमर के पतले गुलाबी होंठ ऊपर की तरफ मुड़ गए और उसने वो खंजर उसकी जांग पर ही छोड़ते हुए आराम से चेयर पर झुकते हुए बोला, बस 5 मिनट है, जो बकना है जल्दी बक, आराम की मौत मरेगा, वरना इतना तड़पेगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर पाएगा। उस आदमी ने लगभग कांपते हुए कहा, पुलिस इंस्पेक्टर हरिवंश यादव ने मुझे वो लिफाफा दिया था। उसके चुप होते ही एक गोली सीधा उसके माथे के बीचों बीच लगी और अगले ही पल उस आदमी ने दम तोड़ दिया। अमर ने आंखें बंद करते हुए अपना सर चेयर पर टिका लिया और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, प्यादा हाथ लगने पर खुशी मनानी चाहिए या उसके मालिक की इस बेवकूफी का जश्न? दीक्षांत एक चिकनी मुस्कुराहट लिए अपनी चेयर से उठा और पास की अलमारी से एक वाइन की बोतल निकालते हुए उन बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा किया तो वो तुरंत ही उस इंसान की लाश को वहां से ले गए। अब केबिन में सिर्फ अमर और दीक्षांत रह गए थे। दीक्षांत ने वाइन खोलते हुए 2 ग्लास में डाला और मुस्कुराते हुए बोला, नेकी और पूछ हम दोनों मनाएंगे, खुशी भी और जश्न भी। मेरे जैसे स्मार्ट दोस्त और एक वाइन की बोतल के होते हुए अमर रावत को सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अमर ने एक वाइन का ग्लास उठाया और उठकर ग्लास खिड़की के पास चला गया, जहां से मुंबई शहर का अच्छा खासा नजारा दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ समर्थ की कार एक पुराने से घर के सामने जाकर रुकी और समर्थ लगभग हांफते हुए कार से बाहर निकला। उसके मैसी बाल पसीने से भीग कर उसके माथे पर चिपके थे, उसकी गहरी काली आंखें अब भी गुस्से से लाल थीं। वो कार से निकलकर तेज कदमों से उस पुराने घर के अंदर जाता है।